में फरार की हैं, उनको गोलियां मार के वहां पे हलाक किया है, शहीद किया है। तो ये तो देखें, इसमें तो सारे सियासतदान इस हमाम में नंगे हैं। कोई ऐसा नहीं जिसने फौज के ऊपर तनकीद ना की हो या जिसने हुकूमत पर तनकीद ना की हो। तो मैं नहीं समझता कि ये जो 43 पॉइंट या 50 पॉइंट वो बना के बैठे हैं, ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की हद तक है। वो शायद इससे कोई सियासी फायदा लेना चाह रहे होंगे, लेकिन अगर जहां तक अमली तौर पे हकीकत का ताल्लुक है तो सारे सियासतदान माजी में और मुस्तकबिल करीब में ऐसी बातें कहते रहे हैं जिनकी इखलाकियात उसकी इजाजत नहीं देता। और बाद का तो उन्होंने ऐसी बातें की हैं जैसे अदलिया की आजादी के ऊपर और जजों के ऊपर, इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे और जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, इसी तरह ये बाकी जो जज साहबान हैं उनको तो पर्सनली फिर टारगेट किया गया। तो या तो इस रवायत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए कि कोई किसी को
सर आप दूर क्यों जाते हैं, मैं और किसी और की बात ही नहीं करती, उस इदारे के जो आपके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के फ्लोर में खड़े होके कहा इस फौज की जो बेइज्जती की थी, उन्होंने कहा था ये फौज आज तक कोई एक जंग तो जीत ना सकी। और मुझे बड़ी हैरत है कि आपने उन्हें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी लगाया हुआ है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी जो उन्होंने ये बात कही थी। बहरहाल जब फौज के बारे में बात होती है तो हमारे बाज़ औक़ात लिसनर्स हमें मेरे पास नंबर्स भी हैं जो ये कहते हैं कि अपने पेट से कपड़ा उठा। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि अगर बाज चीजों का जवाब दिया जाता है। हमारा कल का प्रोग्राम जनाब तनवीर सुल्तान साहब के साथ, परसों का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत था जिसमें फौज के बारे में, मेरे पास एक किताब है जिसको मैंने खुद पढ़ना शुरू किया है, बिट्रेल ऑफ अनदर काइंड, बिट्रेल ऑफ अनदर काइंड। ये किताब जो है ये है अबाउट इस्लाम डेमोक्रेसी एंड द आर्मी इन पाकिस्तान। किसी एमए के में बंदे भी नहीं लिखी, लिखी भी एक फौज के जनरल ने, लेफ्टिनेंट जनरल फैज अली चिश्ती रिटायर्ड, उन्होंने इस किताब को लिखा है। और इसका पहला जो टॉपिक है चैप्टर वन, दैट प्लेइंग वॉर गेम, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। फिर उसके बाद आता है भुट्टो जिया एंड माई सेल्फ टूवर्ड्स मार्शल लॉ। और इसमें अगर किसी एक फर्द वाहद की बदनीयती होती है तो उसमें अफवाज के बारे में बात नहीं की जाती फर्द वाहद में, बल्कि मेरे पास एक और आर्टिकल है जिसको मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, आज ही शेयर करूंगी। उसके जवाब में जनाब तनवीर सुल्तान साहब भी जब मौजूद होंगे शायद मैं उन्हीं से ही वो शेयर करूं, कि जब हम किसी फर्द की बात करते हैं तो हम फर्द की बात करते हैं, हम आर्मी की बात नहीं करते। बेशुमार लोगों ने कुर्बानियां दी पाकिस्तान के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, वी आर वेरी बैडली डिवाइडेड एंड ओवर रूल्ड। सर मैं इस मामले से तो अब निकलते हैं कि जाहिर है 3 घंटे के लिए आपने अपने घर में एक दावत भी करनी है, और दावत में अगर 200 लोग हैं, एक शादी है जिसमें 1000 लोग शामिल हैं, तो शामिल होने से लेके उस तमाम के तमाम इज्तिमा के निकलने तक इट टेक्स मच लॉन्गर टाइम। और खासतौर पर अगर कंटेनर्स भी लगे हुए हैं और सड़कें भी ब्लॉक है, तो दिस इज जस्ट अ ट्रैप, नथिंग मोर देन दैट। बट वॉट एवर गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, आज इनकी बारी तो कल उनकी बारी, दैट्स व्हाट। एंड इस तमाम के तमाम प्रोसेस में अगर कोई सफर करेगा तो ये मुल्क सफर करेगा। मैं सर आपसे यहां पर बात करना चाहती हूं, पाकिस्तान में जो वफाकी आईनी अदालत के बारे में जो तस्करा किया जा रहा था, एट द टाइम फॉर द टाइम बीइंग तो ये मौखर हो गया क्योंकि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी अमेरिका ट्रेवल कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या शरायत रखी, क्योंकि आज भी जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि आईनी तरामीम करना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी 2010 में हुई थी तरामीम, तो जनाब जरदारी साहब ने उनको साइन किया था, एंड दैट वाज द टाइम, तब भी आर्मी को या वो चंद लोग जो रूल कर रहे थे बिहाइंड द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इट वाज टू प्लीज देम। इसके बारे में क्या फरमाएंगे?
کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو حالیہ کردار ہے وہ تو بڑا قابل تحسین ہے, اور یہ جو آئینی ترمیم پیش کی گئی اسمبلی میں اس کے بارے میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ اس کا مسودہ کسی کے پاس بھی نہیں تھا, نہ تو وزیر قانون.
سر اگر مسودہ معذرت کے ساتھ ہوں قطع کلامی کے لیے, اگر مسودہ کسی کے پاس نہیں تھا تو آپ کے اٹارنی جنرل نے ان کو تحریر کیا تھا, اگر مسودہ کسی کے پاس نہیں تھا تو یہ لکھی کہاں گئی تھی, کہاں پہ اس کو ترتیب دیا گیا تھا؟
آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے. یہ نہ تو ڈرافٹ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے پاس تھا, نہ منصور عوان صاحب جو اٹارنی جنرل ہیں پاکستان ہے ان کے پاس تھا, نہ پیپلز پارٹی کے پاس تھا, نہ پرائم منسٹر کے پاس تھا. یہ تو مسودہ آپ کو پتا ہے, یہ تو ایک آفس ہوتا ہے جج ایڈوکیٹ جنرل آرمی کا, جس طرح ہمارے ہر صوبے میں ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے یا اٹارنی جنرل ہوتا ہے. تو یہ تو مسودہ غالباً یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈرافٹ تھا یہ وہاں سے بن کے آیا, اور اس کو آخر دم تک خفیہ رکھا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ دکھایا گیا, پیپلز پارٹی کو جو ڈرافٹ دکھایا گیا وہ نون لیگ کے پاس نہیں تھا. جو نون لیگ کے پاس ڈرافٹ تھا وہ اراکین قومی اسمبلی جو تھے جیسے اسد عمر صاحب ہیں, ان کو جو کچھ دکھایا گیا وہ ایک دو پیج تھا, وہ بھی نامکمل تھا. تو کوئی بھی ممبر آف دی پارلیمنٹ ایسا نہیں جس کے پاس جو اوریجنل ڈرافٹ ہے وہ اس کے پاس ہوتا. تو یہ سارے معاملات تو خفیہ رکھا گیا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا بالکل حق بجانب ہے, وہ یہ کہنے میں کہ اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی تو اس میں جو پاکستانی عوام کے آئینی حقوق ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, بنیادی حقوق ہیں, ان کو محدود کر دیا جانا تھا, اور ایک طرح سے جو عسکری قوتیں ہیں ان کا زیادہ غلبہ ہو جانا تھا. تو یہ سارا کچھ جو کچھ بھی آج اور گزشتہ دنوں میں کیا گیا ہے یہ نہایت افسوسناک ہے, اور آج بھی جو صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے جس کا نام ہے پروسیجر اینڈ پریکٹس آرڈیننس 2024. آپ دیکھیں قومی اسمبلی کا اجلاس کل پرسوں اس کو ختم ہوا ہے, اس اجلاس میں یہ لیجسلیشن نہیں کی گئی, کیونکہ اگر لیجسلیشن کا یہ مسودہ اسمبلی کے فلور پہ آتا اس میں پہلے سب کمیٹی کے پاس جانا تھا, انہوں نے اس کو پڑھنا تھا, اس کی اپروول دینی تھی, پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی تھی, اس کے اوپر اپوزیشن نے اپنی رائے کا اظہار کرنا تھا, اس کے اوپر تنقید کرنی تھی. تو حکومت نے ایک چور راستہ نکالا کہ وفاقی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو تو کوئی بھی جو قانون ملک کے لیے ضروری ہو اس کو 120 دنوں کے لیے جاری کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے 120 دنوں کے لیے پروسیجر اینڈ پریکٹس آرڈیننس کل صدر صاحب نے اس کے اوپر دستخط کیے, آج وہ قانون کا حصہ بن گیا, اور جو ہی قانون کا حصہ بنا اس کی ایک کاپی فوری طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا دی گئی. چیف جسٹس صاحب نے وہ آرڈیننس دیکھا اور فوری طور پہ ایک نوٹیفکیشن کیا پروسیجر اینڈ پریکٹس آرڈیننس کی جو سیکشن 2 ہے اس میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ میں جب کوئی اپیل آئے یا مفاد عامہ کا کوئی کیس آئے اس کی سماعت کرنے کے لیے جو بینچ بنائیں گے وہ اس بینچ کو بنانے کے لیے جو کمیٹی ہوگی 3 رکنی, اس میں چیف جسٹس صاحب ہوں گے, اس کے بعد سینئر موسٹ جج ہوگا, اور اس کے بعد تیسرا جج جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان اپنی مرضی سے نامزد کریں گے. تو آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کیا کہ ان کا ایک اور ان کے چہرے سے ایک اور نقاب ہٹی, ان کا ایک اور نیا چہرہ آج بکلا نے دیکھا, پاکستانی عوام نے دیکھا کہ انہوں نے 5ویں نمبر کے جو جج تھے امین الدین خان, منیب اختر صاحب کو چھوڑ کے, یحییٰ فریدی صاحب کو چھوڑ کے امین الدین صاحب کو اس کمیٹی کا تیسرا ممبر بنا دیا. اب ہوگا یہ کہ جب کوئی पब्लिक इम्पोर्टेंस का ह्यूमन राइट्स का केस जाएगा तो वो सबसे पहले ये कमेटी बैठेगी। अब कमेटी में मेजॉरिटी हो गई है काजी फायजी ईसा साहब की और अमीनुद्दीन साहब की। अब बेचारे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनका एक वोट है, काजी फायजी ईसा साहब और अमीनुद्दीन साहब के दो वोट हो गए, तो दो वोटों के साथ ये फैसला करेंगे कि इस केस को भी जल्द समाप्त की जानी चाहिए या इसको अभी पेंडिंग कर दिया जाए। उससे पहले जो कानून था, पहला कानून ये था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दो मोस्ट सीनियर जज साहिबान, ये तीन जज साहिबान बैठ के फैसला करेंगे कि किसी केस की समाप्त के लिए कौन सा बेंच मुकर्रर किया जाए, थ्री मेंबर बेंच हो, फाइव मेंबर बेंच हो या फुल कोर्ट हो या टू मेंबर्स एडवीन बेंच हो। तो ये देखें, ये आज ही हुआ है, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ये सारा कुछ किया गया है। और इस ऑर्डिनेंस में एक नई शर्त रखी गई है, वो शायद सेक्शन 7 है, ये मैंने अभी भेजा भी है। सेक्शन 7 में ये है कि किसी भी मुकदमे की रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है ताकि उस मुकदमे के ट्रायल में शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ये पहले ये इस तरह की कंडीशन पहले नहीं थी, तो इससे ये मालूम होता है कि तहरीक इंसाफ की कुछ पटिशनें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 9 मई के जो वाकयात हैं, 9 मई के वाकयात के ऊपर तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जी आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दें, हम भी उसमें इंक्वायरी का हिस्सा बनते हैं, आप भी इंक्वायरी का हिस्सा बने, सीसीटीवी फुटेज उसमें लाई जाए और देखा जाए ये कौन लोग हैं जिन्होंने आग लगाई, ये कौन लोग हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को नुकसान पहुंचाया। तो ये पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में, ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसी तरह की बहुत सारे इलेक्शन के मामला हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब ये चीफ जस्टिस साहब की मर्जी होगी कि वो अमीनुद्दीन साहब के मिलके उनकी समाप्त करें या ना करें, या उनको पाइपलाइन में रख दें और ये फैसला कर दें जी कि ये बारी के हिसाब से इन मुकदमात की समाप्त की जाए। तो ऐसा पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये पहली मर्तबा किया जा रहा है। इस तरह दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, दुनिया के ममालिक में ये होता है कि जो मुफाद आमा का मामला हो, मसलन कोई एमरजेंसी लग जाए, फ्लड आ जाए या खुदा ना खास्ता कोई फाइनेंशियल एमरजेंसी हो जाए, तो उस नवीयत के जो मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले सुनती है और बाकी जो आम नवीयत के मुकदमात हैं उनको फिर पेंडिंग कर दिया जाता है कि इनको किसी और मुनासिब वक्त पे सुन लेंगे। तो इस सारी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि हुकूमत चाहती है कि अपनी पसंद के, अपनी मर्जी के फैसले जब तक काजी फायजी ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। आज 21 सितंबर हो गई है, उनकी रिटायरमेंट में एक माह और 3-4 दिन बाकी रह गए हैं। अभी 2-3 दिन में ये पता चल जाएगा कि वफाकी हुकूमत नए चीफ जस्टिस के लिए नोटिफिकेशन एक माह पहले जारी करती है या नहीं करती। बिलावल भुट्टो साहब और नून लीग के भी बाद वफाकी गुसरा ने यह बरमला कहा है कि आइंदा चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ही होंगे, लेकिन मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से पहले हुकूमत ये सोच रही है कि उनके पर काट दिए जाए,
उनके पर काट दिए जाए। मुझे एक बात बताइएगा, काजी फायज ईसा साहब बहुत बार इनकार कर चुके हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता और अगर फर्द वाहद के लिए ये हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। आप क्या समझते हैं कि ये जो वफाकी आईनी अदालत बन रही है तो देयर मस्ट बी समथिंग फॉर हिम, विल क्या इनकी कोई पोजीशन उस वफाकी आईनी अदालत में हो सकेगी टू गिव द फेवर टू जो भी रूलिंग पार्टी होगी?
आप देखें, दुनिया में जहां कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में क्या है, जो आर्टिकल 184(3) में है, जैसे कोई मुफादे आमा का मसला है, कोई ऐसा मसला है जिसमें बुनियादी हकूक को सलब किया गया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बैठती है और उसका पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं बकायदा चैप्टर है उसका, उसको पेश नजर रख के फैसला करती है। लेकिन ये आईनी कोर्ट अगर बना दी गई तो पाकिस्तान में अमली तौर पे दो सुप्रीम कोर्ट होंगे। एक सुप्रीम कोर्ट हो वो होगा जिसमें आम शहरियों के मुकदमात, प्रॉपर्टी के मुकदमात, लेन देन के मुकदमात, जराइम के मुकदमात सुने जाएंगे, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट वो होगी जो ये फैसला करेगी कि क्या तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया गया, जो 9 मई के वाकयात हैं, क्या उनके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए या नहीं, या क्या जो मकसूद सीटें हैं क्या ये तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, क्या ये इनमें बाकी पार्टियों में बांट दी जाए, जैसा कि इलेक्शन कमीशन सिकंदर साहब ने ये बांट दी थी 23 सीटें। तो ये सारे मामला हैं।
चलिए सर, एक बात मुझे बताइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई को बतौर सियासी जमात पार्लियामेंट से हटा दिया और तमाम मेंबरान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर करार दिया, इसमें कहां तक सदाकत है?
ये तो मैंने बकायदा नोटिफिकेशन भी भेजा, अगर पॉसिबल हो उसको दिखा दिया जाए। हुआ ये कि जो 8 जजों का फैसला था, 8 और 5 जजों का फैसला था, मंसूर अली शाह साहब ने जो जजमेंट दी 12 जुलाई को, उसको गैर मोसर करने के लिए, ये तो वो आ गया जी जो प्रोसीजर एक्ट है जिसमें वो सेक्शन 7 है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, कि मैंने अभी भेजा पार्टी पोजीशन, तमाम पार्टियों की पोजीशन आ गई उसमें, जो ये आ गई इसमें देखें, ये सारी पहले मुस्लिम लीग नून की हैं और नीचे जाके ये देखें जो ये सीटें हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नीचे आ गया।
इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग इज एट द टॉप 110 के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 69, मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट जो है 22 हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 5 हैं, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान 4 है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 1 है जिया ग्रुप से, और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 1 है, नेशनल पार्टी की 1 है 213। सुन्नी इत्तेहाद की 80 सीटें हैं, इंडिपेंडेंट 8 हैं, जमीयत उलमाए इस्लाम, तो पीटीआई बीच में से बिल्कुल निकल गई है। इसका मतलब है वो जो 8 जजेस का फैसला था उसको रद्द कर दिया गया,
उसको रद्द किया है एक कानून बना के। और देखें ये अगर एक तरफ जजमेंट हो सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी सूबाई हाई कोर्ट की और दूसरी तरफ कोई कानून हो, तो फिर वो जजमेंट गैर मौसर हो जाएगी और कानून प्रिवेल करेगा। तो ये वफाकी हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ जो 7 जज साहिबान थे उनके फैसले को इनफेक्टिव, इनफ्रक्चुअस करने के लिए एक कानून बनाया और उस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से उस पर अमल कराया गया, जिसके नतीजे में अयाज सादिक साहब ने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा कि जी
अंधेर नगरी, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं अंधेर नगरी चौपट राज।
बिल्कुल, आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया, अंधेर नगरी चौपट राज। तो ये हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसकी जो एलाइज हैं जैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनको, और प्लस जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, जो मैं समझता हूं कि मुल्क और हमारे वतन के लिए मैं समझता हूं ये इंतहाई डेंजरस एक्सरसाइज होगी। ऐसा पहले भी किया गया, पहले पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा किया गया और एक मौके पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी ये किया गया था कि उनको भी दीवार के साथ लगाया गया। और इससे पहले यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी दीवार के साथ लगा दिया गया था, लेकिन ये ऐसा करना किसी भी हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है। उनको दीवार के साथ लगाएंगे तो आवाम की पॉपुलैरिटी
بہت شکریہ. بالکل صاحب, قانون خود سے زبان سے بولے گا, اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی بارے میں, اس ملک میں ظاہر ہے جن کے پاس حکومت ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے وکلا کیا کر رہے ہیں؟ وہ مطلب لسی پی لی ہے انہوں نے اور لسی کے بیچ میں پیڑا کھا کے سو گئے.
وکلا نے تو کل سے باقاعدہ ایک تحریک کا آغاز کر دیا ہے. انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہیں جتنی بھی کی گئی ہیں اس کو سرے سے مسترد کیا ہے.
مگر ان آپ کے وکلا میں دراڑ تو ہے نا, آپ کے وکلا بھی ڈیوائڈیڈ ہیں آن دا پارٹی گراؤنڈ, ناٹ دے آر ناٹ یونائٹیڈ فار دا کنٹری.
اس میں میرا موقف یہ ہے کہ جتنی بھی وکلا کی تحریکیں چلی ہیں اس میں کثیر سرمایہ استعمال کیا گیا ہے. جب افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے تحریک چلی تو اس میں مسلم لیگ نون نے کروڑوں یا اربوں روپے لگائے تھے جو وکلا میں تقسیم کیے گئے, سیاسی جماعتوں میں تقسیم کیے گئے. اس سے پہلے جب
سر آپ کے مجھے اب افسوس کوئی نہیں ہے. آپ نے آج جب یہ بہت بڑی بات بتائی کہ وکلا میں تقسیم کیے گئے تھے, جج آپ کے ویسے بکے ہوئے ہیں, وکیل آپ کے ویسے بکے ہوئے ہیں, تو آپ کو پھر چاہیے کیا؟ ٹھیک ہے پھر کھاؤ ڈنڈے کھاؤ تے ایش نال رہو.
یہ تو میں نے ایک گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بتائی ہے کہ کوئی سیاسی تحریک چل ہی نہیں سکتی جب تک اس کے اوپر سرمایہ نہ خرچ کیا.
کسی نے وکیل کے بارے میں کہا تھا, پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو, آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. مگر یہ 21ویں صدی ہے اور وکیل بھی بکے ہوئے ہیں, آپ کے منصف بھی بکے ہوئے ہیں, تو پھر واٹ کین یو ایکسپیکٹ؟ سیاستدان بھی بکے ہوئے ہیں. یہ کتاب سے پارلیمنٹ سے میں آپ تمام کو کہتی ہوں, اور بلکہ جس کو چاہیے آپ یہ کتاب ضرور حاصل کریں, اٹس اے لٹل انویسٹمنٹ. میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ یہ کتاب ضرور حاصل کریں, کہ ہم فوج کو قطن برا نہیں کہتے. فوج کے بیچ میں چند جنرل اور ایک جنرل کی لکھی ہوئی ہی یہ کتاب ہے. میری آپ تمام سے درخواست ہے, اور جب جنرل کو پتہ ہی ہے کہ ان سیاستدانوں نے انہی کے قدموں میں آ کے گرنا ہے, بیٹریل آف این ادر کائنڈ, ضرور اس کتاب کو آپ پڑھیں. اور میں پاکستان کے بچے کو کہتی ہوں آپ حمود الرحمان کمیشن بھی پڑھیں, آپ بیٹریل آف این ادر کائنڈ بھی ضرور پڑھیے گا. یہ جو اقتدار ہے اتنی بری چیز ہے کہ اس میں مختلف میں اٹ از سرپرائزنگ جو یہ ہے. اور فوج کے بیچ میں وہ ایک آرٹیکل تھا, کل رات کو مجھے پڑھنے کا موقع مل رہا تھا, میں بلکہ اس آرٹیکل کو پڑھا بھی, میں شیئر بھی کروں گی, بلکہ میری کوشش ہوگی کہ تنویر سلطان ہی اس کو شیئر کریں. آپ امیجن کیجئے گا کہ فوج کے بیچ میں ایک فرد واحد آیا. یہ شروع ہوتا ہے جناب ایوب خان سے, ضیاء الحق صاحب, اور اسلام کے چکر کے بیچ میں مطلب کفر تول کے رکھ دیا ان لوگوں نے, اور اس کے بعد پرویز مشرف. ایک شخص نے پورے کے پورے ادارے کو, اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. یقیناً ادارے کے اعلیٰ ادارہ دیکھ ہی رہا ہے کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے. مگر جھوٹ بولنے کا عالم یہ ہے کہ فوج نے اب بھی یہ کہا کہ اس وفاقی آئینی عدالت کے یہ جو 53 ترامیم ہیں انہوں نے نہیں کی, حالانکہ انہی کے دفتر سے یہ ترامیم تیار ہو کے آئی ہیں. آپ کے اٹارنی کو بھی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا یہ ترامیم, یہ مسودہ حقیقت میں تھا کیا. تو بہرحال اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو بوئیے یہ فصل اور کاٹنے کے لیے تیار رہیے. بہت شکریہ جناب جلیل صاحب, کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر پر؟
آخر میں یہ آج کی جو خبر آپ نے پڑھی ہوگی دیکھی ہوگی کہ آج بھی دہشت گردوں کے ساتھ کھڑپتیں ہوئی ہیں, اس میں 12 خوارج مارے گئے, ہمارے 6 جوان شہید ہوئے. میں نے یہ جب خبر پڑھی تو یقین کیجئے کہ مجھے بہت افسوس ہوا. ہم اب ایک دو ہفتے بعد, دوسرے تیسرے ہفتے بعد ایک ایسی خبر آتی ہے کہ کوئی جوان لڑکا 22 سال کا کیپٹن شہید ہو گیا, 24 سال کا میجر شہید ہو گیا. یہ ساری شہادتیں خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں, وہاں پہ دہشت گرد منڈلا رہے ہیں, لوگوں پہ حملہ کر رہے ہیں. تو اس تناظر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وفاقی حکومت یہ سارے جھنجٹ چھوڑ کے इस तरफ तवज्जो दे के दहशत गर्दी को हमने कितनी जल्दी और कैसे खत्म करना है। तो इस सिलसिले में अली अमीर गंडापुर साहब ने अगर ये कहा है कि वफाकी हुकूमत सबसे पहले इधर तवज्जो दे, तो मैं समझता हूँ ये उनकी बात बड़ी जायज है और पूरी कौम ये चाहती है कि दहशतगर्दी का मुल्क से खात्मा हो। लेकिन आप देखें कि ये अब कुछ बढ़ती जा रही है बलूचिस्तान में भी और इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी, और आए दिन शहरियों को बेगुनाह मारा जा रहा है जिसमें हमारी पाकिस्तानी फौज का भी जानी नुकसान हो रहा है। ये बच्चे कौम के बच्चे हैं, ये शहीद होने वाले बच्चे हम में से ही किसी के बहन भाई हैं, किसी के बेटे हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि सबसे पहले ये मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म किया जाए और ये पावर पॉलिटिक्स जो पावर गेम है इसको खत्म करे गवर्नमेंट, जमहूरियत फले फूले, जिसका राइट बनता है उसको आगे आने दें।
अल्लाह ताला आपका ख्वाब पूरा करे, मगर ये ख्वाब दीवाने का ख्वाब है। बहुत शुक्रिया जनाब जलीलुर रहमान साहब, किसको ताकत नहीं चाहिए। आपके वकील झूठ बोलते हैं, आपके पॉलिटिशियंस झूठ बोलते हैं, हर इक्तदार में रहने वाला शख्स झूठ बोल रहा है। एनीवेज थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह हाफिज। जनाब जलीलुर रहमान साहब से हमने आपकी बात कराई, सवाए झूठ के और कुछ भी नहीं उस मुल्क में। दिस इज कॉल्ड इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान। चंद स्पॉन्सर्स, वेलकम बैक, स्टे ट्यून्ड प्लीज।
अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। कमर्शियल मॉर्गेज, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज, रीफाइनेंस, रिन्यूअल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज, ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस। कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल। जैस्मीन परमार, मॉर्गेज ब्रोकर। कॉल टुडे 6479235659, 6479235659। स्पीक योर लैंग्वेज इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी। लाइसेंस नंबर 13654।
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक, ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं आपके 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 4166710577।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स, LEDs और होम अप्लायंसेज की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
भाई सस्ता ला ला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला। ओहो सरला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां, सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप। नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटां, बाटियां सब कुछ मिलदा है। साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दी ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
क्या बात है बेटे, बढ़िया बाजार नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से प्रदूषण एक गधा गाड़ी खरीदते, हर मोड़ पे रुक जाती है।
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साउथ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी पर फर भागेगी। 21 ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर फैमिलीज विद किड्स। अगर आपकी इनकम $60,000 से कम है और आपके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 से लेकर 60,000 तक की ग्रांट मिल सकती है और ये फंड 3 हफ्ते में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट ग्रांट ऑन्टेरियो, अल्बर्टा और BC प्रोविंस के लिए है। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए शावेज 6477690241 6477690241।
मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का
लाहौरी स्टाइल नाश्ता मजेदार कढ़ाई मग पोटिंग कबाब सिजलिंग बारबेक्यू आइटम
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, आप जरूर कीजिएगा। यू आर मोर देन वेलकम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बस अपनी लैंग्वेज को अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कीजिएगा। आपने ड्रॉप कर दी, कितने गंदे हैं आप।
नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है 416-620-1778।
अगर आप डायबिटिक हैं ना तो एक रिसर्च आई है, इस रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। माहिरीन कहते हैं कि जैतून का तेल डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन एंड मुअस्सर हो सकता है। जिक्र करूंगी इसका थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम, तारिक बात कर रहा हूँ जी।
जी तारिक, कैसे हैं आप बताइए।
बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली मैं एक रेगुलर लिसनर हूँ इस स्टेशन का।
जी
यकीनन हर आदमी का अपना राइट होता है एक्सप्रेस करने का,
मौकफ अपना।
आपका सबका हक है, आपका भी हक है, आपका चैनल है और यकीनन उसमें आपका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है।
आपका जितना ये मेरा चैनल है शायद उससे ज्यादा आपका है। मैं यहाँ बैठी जरूर हुई हूँ, आप बताइए आपका क्या ख्याल
है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो चैनल सुनते हैं वो उसमें सब लोग शामिल होते हैं।
ठीक,
उसमें हर पार्टी का बंदा शामिल होता है। मैं किसी पार्टी से तल्लक तो नहीं रखता हूँ, लेकिन एक वन साइडेड जो माहौल बनता नजर आता है ना, उसमें जरा थोड़ा सा वो होता है कि देखिए ये पॉलिटिशियन, ये कैबिनेट, ये मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर, ख्वाब वो अब है या पहले थे या उससे पहले थे, जितने भी थे सब पॉलिटिशियन यही घूम घाम के हुकूमत में आते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो कभी किसी के साथ होते हैं, कभी किसी के साथ होते हैं, फिर वो उडारी मारते हैं और किसी के साथ मिल जाते हैं। इसी तरह हमारे साफीदारों का काम भी यही है, वो कभी किसी के साथ होते हैं, कभी किसी के साथ होते हैं। अपने मुफाद के लिए हर आदमी, हर पॉलिटिशियन, हर अदारा अपना पार्ट प्ले करता है। तो ऐसा माहौल यकीनन, मेरा मतलब है कि अपोजिशन के खिलाफ अगर हुकूमत के खिलाफ बात होगी, अपोजिशन की फेवर होगी तो चैनल की रेटिंग बढ़ेगी। ये तो हर टीवी चैनल का ये होता है कि अगर आप हुकूमत की फेवर करेंगे, माहौल बनाएंगे तो चैनल बहुत कम लोग सुनेंगे, वो सिर्फ वही सुनेंगे। अगर आप अपोजिशन को, अगर आप हुकूमत को क्रिटिसाइज करेंगी, अपोजिशन का क्रिएट करेंगे तो यकीनन चैनल की रेटिंग बढ़ेगी। तो बस मेरा ये मतलब है कहने का कि थोड़ा सा जो है ना, इसमें सबको आप टाइम दिया करें थोड़ा सा। मेरा मतलब पॉलिटिशियन तो ऐसे ही हैं, कभी इधर हैं कभी उधर हैं, इदारे कभी इधर हैं कभी उधर हैं, सब ऐसे ही चल रहा है वहां। तो बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया तारिक, मेरे साथ रहिएगा एक सेकंड के लिए। आप पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है आज तक आपने सही कहा कि रेटिंग के हवाले से आप यकीन कीजिएगा मुझे TRP का कोई कंसर्न एज सच नहीं है। शायद मेरी कमजोरी जरूर है कि कमजोर आदमी के साथ आम जिंदगी में भी उसकी तरफ साथ जाता है। फिर हमें बाज़ोकात हमारी कंडीशनिंग ऐसे कर दी जाती है कि हम बाज चीजें सुनने के कायल होते हैं, बाज चीजें हम सुनना नहीं चाहते। आप मुझे मेरे साथ मेरी हमदर्दी सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। मैं आज ये जो किताब एक शुरू किया, बहुत शुक्रिया जनाब तनवीर सुल्तान साहब का जिन्होंने मुझे वो किताब भेजी। جس میں انسانوں نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی. یس دس از ایبسولوٹلی رانگ. جمعیت علماء اسلام میں بھی آج تک کبھی ووٹنگ نہیں ہوئی تھی, پیپلز پارٹی میں بھی آج تک کبھی انٹرنل ووٹنگ نہیں ہوئی, مسلم نون میں بھی آج تک کبھی کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی, تحریک انصاف میں بھی یقیناً آج تک کبھی ووٹنگ نہیں ہوئی تھی. مگر جسٹ ٹو بلاک ون پارٹی, اور میں بڑے اوپنلی یہ کہتی ہوں کہ ایک زمانے میں یہی کام مسلم لیگ کاف کے ساتھ, اس کے ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی کیا گیا تھا. ٹھیک, تو ہم صرف اس کی بات کرتے ہیں. مجھے بھی افسوس ہے اس بات کا کہ آپ پیسے کے لحاظ سے ملک کے پاس آپ کا پیسہ نہیں. میں آپ کوئی بھی پاکستان کی اکانومی کی بات نہیں کر رہے, پاکستان کی ایکسپورٹس کی ہم کوئی بات نہیں کر رہے. اگر ہم بات کرتے ہی کرتے ہیں تو یا تو آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں, اور یا ہم ہمارے ہی آرمی آفیسرز نے بعض اوقات پاکستان کے مفادات کو نقصان بھی پہنچایا. مجھے بے اختیار کبھی کبھی جنرل پاشا یاد آتے ہیں. وہ میری اور آپ کی ہوش کے زمانے کی بات تھی جب ریمنڈ ڈیوس کو نکالنا تھا, یعنی پاؤں کے تلے آگ لگی ہوئی تھی کہ کس طرح سے ریمنڈ ڈیوس کو فوری طور پر ملک سے نکلوا دیا جائے. یہ جنرل چشتی کی جو کتاب ہے اس کو میں نے بھی پڑھنا شروع کیا, آپ سے بھی ریکویسٹ ہے آپ بھی ضرور پڑھیں. اور اگر کبھی کسی ایک انسان کی فرد واحد کی غلط بات کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. قرآن پاک میں حضرت نوح کا ذکر آیا, اگر ان کا بیٹا ناخلف تھا تو اس کے ناخلفی کا بھی تذکر آیا, ان کی بیوی اگر ناخلف تھی تو اس کا بھی تذکر آیا. اگر کوئی غلط ہے, اگر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس میں میں بالکل ریٹنگ کے حوالے سے نہیں کرتی. میرا خیال ہے کہ زیادتی زیادتی ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. یو آر مور دین ویلکم اینی ٹائم. جب بھی آپ نے کوئی بات کہنی ہو دس از یور اون پلیٹ فارم, یو کین کال اینی ٹائم اینڈ سے واٹ ایور یو وانٹ.
بہت شکریہ آپ ٹائم دیتی ہیں, میں مشکور ہوں آپ کا. اور اس میں چلتے چلتے میں تھوڑا سا ایک بتاؤں گا کہ اتفاق ایسا ہو جاتا ہے جیسے اے آر وائی کی کسی زمانے میں بالکل ہی ریٹنگ نہیں تھی اور اس کا کہیں دوسرے چینل کے ساتھ پرابلم ہو گیا, کوئی کیس بن گیا اور وہ حکومت کی فیور میں تھا, یہ حکومت کے خلاف بالنا شروع ہوئے, تو اس وقت سے آج تک اس کی ریٹنگ صرف اس وجہ سے پڑی ہے کہ وہ ایک حادثاتی طور پہ انہوں نے یہ اپنا وہ چینج کیا اور ان کی ریٹنگ بڑھ گئی.
بہت شکریہ. میں نے اپنے 29 سال میں, میں اوپنلی آج آپ لوگوں کو قسمیاں یہ بات کہہ رہی ہوں, اٹس اوکے, مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. میری قسمت میں جو سختی ہے, اگین قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی دکھنے میں آپ کو نظر آتا ہوگا. مجھے بہت ٹف ٹائم ملا. میں اگر اپنے 28 سال کا ذکر کرتی ہوں تو آپ یقین کیجئے مجھے مردوں کی دنیا نے بہت ستایا. میں آئی وش کہ میں کبھی کتاب لکھنا چاہوں. میرے لسنرز نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اس میں کوئی شک نہیں, مگر مجھے جتنا تنگ کیا اور جتنا مجھے کارنر کیا, بٹ دیٹس اوکے, الحمدللہ. جو زندگی کا میرا دن قبر کے باہر ہے اس کو میرے کوئی اندر کر نہیں سکتا. شکریہ. کالر ہمارے ساتھ ہیں. طارق, یو آر مور دین ویلکم اگین اینڈ اگین, پلیز گیو اس اے کال اگین. اس وینسڈے کو میں نے پاکستان کے ایک بیوروکریٹ سے آپ کی ملاقات کروانی ہے جو گریڈ 20 تک گئے, 20th گریڈ تک وہ گئے. ان سے ہم ان کی آنکھوں دیکھے حالات سنیں گے. اور آج میں جب ان کا ذکر کر رہی ہوں اس بیوروکریٹ کا, تو مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ کسی پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ نہیں ہے, نو. مگر انہوں نے کچھ چیزوں کی زیادتیاں جو دیکھی یا نہیں دیکھی یا جو سسٹم کی اچھائی ہے, اس وینسڈے کو وہ میرے ساتھ ہوں گے 3:30 بجے. پلیز اسٹے ٹیون. السلام علیکم جی.
جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں
آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے. کون بول رہا ہے؟
میں جی پاشا بول رہا ہوں.
جی پاشا,
میری ایک ریکویسٹ ہے, صرف آئی سوئر ٹو دیٹ از اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ, اینڈ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں بھی ایک پاکستانی ہوں اور آئی جسٹ لو پاکستان. آئی ہیو نو اینی کمپنی, نو اینی پولیٹیشین ٹو ٹیک سائڈ. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو لوگ پتہ نہیں ڈرتے ہیں کرتے ہوئے. اگر پاکستان کو کلین اینڈ شفاف کرنا ہے اور بالکل نیٹ کرنا ہے, پلیز اور پلیز سارے رل کے آرمی کو, پاکستان کے جو ڈیسیجن میکر ہیں جنرل ٹاپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, इनको अल्लाह ताला हिदायत दे, ये आर पॉलिटिशियन से निकल जाएं हमेशा के लिए। यकीन करें मेरा और आपका पाकिस्तान A1 ना हो गया तो आप मुझे जूतियों से मुझे मेरा सर कंटा कर दो।
नहीं नहीं, क्योंकि
पाकिस्तान जो है इस वक्त न्यूक्लियर पावर है, दुनिया में तमाशा बना हुआ है और हमारे में जरूरत नहीं है कि हम आर्मी के खिलाफ कोई भी बात कर दें, वो आपको अंदर कर देंगे, आपके बीवी बच्चों को उठा के ले जाएंगे। क्या ये आर्मी पाकिस्तान के मुहाफिज हैं? हमारे ऐसे मुहाफिज होते हैं कि वो मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं और वर्ल्ड हंस रहा है। सारे आरफा जी, वर्ल्ड तमाशा बनाया हुआ है पाकिस्तान को। हमारा नेबर इंडिया देख लें कितनी बुलंदियों पे पहुंच गया, बांग्लादेश देख लें। हमें तो इंकलाब चाहिए पाकिस्तान में, बांग्लादेश वाला कि जो के मरने पे आ जाए, यू नो, या तो आर्मी नहीं है, आर्मी के जनरल। मैं अपनी आर्मी को सलूट करता हूं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, वो ही है हमारी जाने हिफाजत करने वाले बॉर्डरों पे। ये जो उधर हो रहा है बलोचिस्तान में हो रहा है, क्या ये मजाक नहीं है? हम जजों को बुरा कह रहे हैं, हम पॉलिटिशियन को बुरा कह रहे हैं? नो 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 नो, पीछे से जो डंडा देने वाले हैं वो आर्मी के जनरल इनको हैं। इनको ऑर्डर आते हैं, ये कहते हैं तुमने ये करना है वरना तुम और तुम्हारे बीवी बच्चों को उठा के हम अंदर कर देंगे। चलो वो डर गए, वो डिसीजन मेकर नहीं है। डिसीजन मेकर जो ये आर्मी के टॉप जनरल हैं, इनको अल्लाह ताला गर्क करे। इनको जो है मेरी बददुआ है, जो पाकिस्तान का इतना सत्यानाश किया हुआ है कि दिल रोता है कि यार है। और हम कॉल करते हैं अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और या आई प्राउड टू बी पाकिस्तानी। अगर इनकी हुकूमत रही, कोई भी अपने आप को नहीं बोलेगा कि मैं पाकिस्तानी, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। शेम ऑन हिम, आई टू बी पाकिस्तानी, मुझे शेम होगी। मैं किसी को बताते हुए डरता हूं कि वो कहेगा ही इज अ टेररिस्ट। यार तुम अपने मुल्क में आर्मी के इतने जनरल बैठे हुए हो, तुम अपने मुल्क में पॉलिटिशियन का, अपने जो है ब्यूरोक्रेट जो ऊपर बैठे हुए टाट आके बुकें लिख रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़ी से बड़ी बुक लिख रहे हैं, क्यों नहीं तुम ऑन ड्यूटी हो के ये अनाउंस करते कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैंने कब्र में जाना है, मैंने सच बोलना है वरना मुझे फांसी पे लटका दो। या जन्नत में मैंने, अगर बिलीव है तुम्हारा तो दस पाए, अगर नहीं बिलीव है तो डोंट बिलीव। अल्लाह तुम्हें जो है उसका जो है बिलीव करवा देगा क़यामत वाले दिन, अगर तुम्हारा बिलीव एज ए मुस्लिम है। मगर तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान दुनिया कहां की कहां पहुंच गई है। हम बूढ़े हो गए पाकिस्तान में पैदा होने के बाद, इधर दफा हो गए। अगर पाकिस्तान इधर ही अच्छा होते, हम खे खाने इधर कैनेडा में ना आते, अमेरिका में ना आते, हम पाकिस्तान में ठहर। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान तोड़ने से आगे से जो दौड़ रहा है। हम रेडियो पे आके बातें करते हैं, नहीं जी ये पॉलिटिशियन ठीक नहीं है। भैया ये पॉलिटिशियन सारे ठीक है, इनको डंडा देने की जरूरत है। और इनको डंडा कौन देता है पीछे से? हमारे आर्मी के जनरल। आर्मी के जनरलों को नीचे उतारा जाए, जैसे वो आपका लवली फ्रेंड बाजवा, अल्लाह ताला उसको दुनिया में दोज़ख दे दे, मेरी बात दुआ है।
नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे उल्टा लफ्ज ना कोई इस्तेमाल करें। अब आपका पैगाम चला।
माई पालो जी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे दुख होता है कि एक पाकिस्तान का मुहाफिज जो है इतनी हरकतें गिरी हुई करके जाता है कि आपको फूलों के हार पहनाएंगी, क्या आप उसको सर कितने उठा के करेंगी। हर बच्चा बच्चे की जुबान पे बाजवा का नाम है। हर बच्चे मेरे जैसे अनपढ़ को पता नहीं है कि बाजवा कौन था पहले, क्या अब पता चल गया यार ये मुल्क के मुहाफिज है। इसे तो हम लोगों को डूब मरना चाहिए पानी में, कि हम लोग सच्ची बात नहीं करते, अल्लाह से डर के बात नहीं करते। जो भी तुम्हारा बिलीव है, तुम डर के बात नहीं करते, तुम लोग पॉलिटिशियन को खराब कहते हो, बिल्कुल है। तुम्हारे ला जो भी ला मेकर हैं, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट है, जो भी है, बिल्कुल है। भैया पहले मुझे अपने मंजे नीचे सोटा फेरो, फिर बोलो कि यार ये पीछे कौन है। हु स्टार्ट द फायर, इंग्लिश में कहते हैं ना हु स्टार्ट द फायर। ये तो सारे आग डालने, ऊपर से पेट्रोल डालने वाले हैं जलती आग पे, कि हमें जी ऑर्डर आए। भैया तुम्हें ऑर्डर आए कि तुम जो दरिया में छाल मार दो, मारोगे? नहीं मारोगे जितनी देर तक मैं तुम्हें गर्दन से पकड़ के दरिया में नहीं फेंकूंगा। तुम कभी भी नहीं मारोगे अपने खुदा से खौफ करके। ये ओनली मेरा मशवरा है, आई लव टू बी ए पाकिस्तानी, आई रिस्पेक्ट माई आर्मी. उन लोगों के लिए मेरा सलूट है उस आर्मी के जवानों को जो मुल्क की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे अपनी जान दे रहे हैं, रात दिन शहीद हो रहे हैं बलोचिस्तान में, पश्तून खान में, जो भी हो रहा है. तुम लोगों ने तो तमाशा बनाया हुआ है. तुम लोग चाहते हो कि ये अवाम आपस में लड़ती मरती रहे और हम आपस में बाहर के मुल्कों बिल्डिंगें बनाते रहे. जो भी पाकिस्तान का जनरल है, जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी टॉप क्लास का जज है, वो जनाब उधर से पैसे उठाते हैं रिटायरमेंट के बाद, इधर आता है जी कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई, जैसे आके प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट है, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, इधर आके वो जो है अजाशियां कर रहे हैं, झूठ सब बोल के आ रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, फिर जाके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हुए. उनको लगाने वाला कौन है? आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, पब्लिक भी जानती है. अर्थ जी इसका हल क्या है? आप लोगों को इंकलाब लाना ही पड़ेगा बांग्लादेश की तरह. ये मुल्क उस वक्त ठीक होगा. आर्मी के जनरल डिसीजन मेकर जो पीछे हैं, सोटी पकड़ी हुई है, उन्होंने बैज लगाए हुए हैं. किस चीज के उन्होंने बैज लगाए हुए हैं? मैं तो उनके सबके बैज उतार देना चाहता हूं.
बहुत शुक्रिया. मैं आपको यहां पे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, कल ही जो एक वाकया हुआ है कि एक डॉक्टर, हालांकि वो मेंटली इल था, अब जो भी कहा जाए, उसके बाप को अरेस्ट किया गया था, मगर अल्टीमेटली पुलिस की हिरासत में गया. वो कहा गया कि पुलिस की हिरासत में अपने दोस्त की गोली लगने से ही वो मर गया. फिर उसके माँ बाप उसको बिल्कुल अपने सहराई इलाके में तदफीन के लिए लेके जा रहे थे. मॉब ने पीछा किया, उसका सर उतारा, उसके जिस्म को जलाया, जली हुई बॉडी को फिर माँ बाप ने कैसे जमीन में उतारा. मेरा ख्याल है कि भूख और अफलास और ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अल्टीमेटली जो लोग भी ज्यादती करेंगे उनका इंजाम इसी तरह का होगा. बहुत शुक्रिया सर, आप
बहुत शुक्रिया. थैंक यू.
अस्सलाम वालेकुम जी.
अस्सलाम वालेकुम जी. अरशद अहन, बहुत बहुत सलाम.
वालेकुम अस्सलाम.
अय्या का नाम दू भैया का दस्ता इन गल ले आ कि जेडी भाई वालों ने गल की है ना 100% मैं उन्हें एग्री कर दा. नंबर वन 100% सही गल कर रहा. हर पाकिस्तानी बच्चे तो लैके, औरतों तो लैके, बुजुर्गों तो लैके, सारे की यही आवाज है. ईवन के मिलिट्री के जेडे थले आले रिंक है ना, ब्रिगेड थले आले रिंक, उन्हें भी यही आवाज आ पी है सानू जेड़ा ना ये कंजर खाने च पाया है, जेड़ा उत्ते चार पांच जनरल बैठे ना इन्होंने पाया. क्योंकि मेरा आपा मैम मिलिट्री का इन्ना प्यार है ना, क्योंकि मेरे ऑलरेडी खानदान ब्रिगेडियर भी आ, मेजर भी आ, सारे कम्यूनिटी के बच्चे उन्होंने रहे आ. राइट, मैनू जान का बड़ा मौका मिलता सी इन्हों जो महसूस जो होंगे इन्होंने पार्टियां. तुम यकीन नहीं करना एदा किसी दुनिया की मिलती दी कोई भी पार्टियां, कोई भी क्लब, कोई भी एदा नहीं है जिंदे साडे भुखे पाकिस्तान की आवाम दे इन्होंने बनाया अपना सिस्टम. इन्हों का एक अलहदा एक पैराडाइज बनाई इन्होंने अपना. इन्हों स्कूल अलहदा, इन्हों हॉस्पिटल लहदा, इन्हों कोई पहनी भी नहीं लगती. राइट, उपर यह सारे मुल्क का कारोबार भी इन्होंने कोल ही आ. मैनू दसो 6 लाख फौज का जेड़ा इन्हों का स्पोक परसन हैगा, वह इन्ना झूठ बोलता कि मीडिया उत्ते भी साडा सियासत कोई तालक नहीं. राइट, हूँ रीसेंटली जेड़ा कि कानून चेंज कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं गा. ईवन का वजीर आजम नहीं पता भी है की हो रहा. हाँ जी, वह अगे आके तो अपना ही करवा रहे हैं सिस्टम न ताकि अदालत जी इंसाफ ना कर. बाहर लगे तो अगे भी अदालत इंसाफ तो कोई करनी है कोई नहीं. एवं जुबे लाके 15-15 लाख रुपया तनखावा लेंदियां, उत्ते पानी तेल सारा कुछ बिजली उन्होंने फ्री. इन्हों का लगा है फुदू फुदू ला के ना इन्होंने अपना सिस्टम किया सीधा. हूं तुम इन्होंने दसो जिन्हें भी जनरल रह गए.
मैं तेरी गल एक गल बहुत तुसी प्यारे पर आओ गुस्सा अपनी जगह ते. वो कहते हैं जोश में बाहोश रहने में तुम्हारी जान है. कोई उल्टा लफ्ज ना इस्तेमाल
के ना ना थोड़ा जा देखो
ना ना आप ना इस्तेमाल करें गलत लफ्ज.
15 साल अमेरिका जाई 22-25 साल में लोगे कनाडा दे. राइट, असि दो बेडरूम का कैश ना घर नहीं ले सकते, असि इवन का अपार्टमेंट नहीं ले सकते. जनरल ने आके कितों आके पैसा मिलियन ले आके इतने वड्डे वड्डे बनाया फार्म हाउस, इतने भी बनाया होया, इंग्लैंड भी बनाया होया, अमेरिका च भी बनाए हुए. पार्क एवन्यू किन्नी वड्डी जगह वा, सारे वजीर आजम सारे उत्थे फ्लैट है. राइट,
सवाल पूछ सकनी अगर तुहाडी इजाजत है जदों तुहानू याद होएगा कुछ अरसा पहले पाकिस्तान दे कैबिनेट दे लोकी इत्थे आए सी टोरंटो च रहण आलियां ने उन्हां नू प्रोटेक्शन भी दित्ती सी उन्हां नू सी एन टावर ते जाके खाना भी खवाया सी ए मैं और तुसी हां जेड़े जदों ए जनरल सानू नजर आ जांदे ने ना ते असी इन्हां दे पैरीं पै जांदे आ मतलब साडा भी ते मोरल कसूर है ना साडा भी ते कसूर है
एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੱਦੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਦੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ 500 ਦਾ 1000 ਦਾ ਵੀ ਟੇਬਲ ਦਊਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੂੰ
ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਡਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਫ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਸੂਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਮਲਕ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਾਚੇ ਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਰੀਆਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਜਾਣ
میرے بھائی یہ دنیا مکافات عمل ہے دنیا مکافات عمل ہے دنیا مکافات عمل ہے
بدماش ٹولا وا ہے بدماش ٹولے نو ختم کرنا چاہیے انہوں نے ہے کہ آپ کاجن کاجن کنا چار گے جنگل کے باقی سارے صحیح ہو جان گے
بہت
کروں گا کون ہاں جی
کرے گا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا
وہی ہے نا پھر جج بھی دیتا بھی یہ وہی لیا جی انہوں کی گل منے
میں عمران خان کی ایک غلطی ضرور کہوں گی جب اس کو باجوا صاحب چلنے نہیں نہ دے رہے تھے تو خان صاحب کو چاہیے تھا آگے کہتے کہ یہ سسٹم اس وقت کہتے یہ سسٹم کرپٹ ہے مجھے اس 3 سال کے بیچ میں ایک بھی فیصلہ نہیں کرنے دیا یہ ان کو کہنا چاہیے تھا ان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ فرح گوگی از ڈوئنگ رانگ ان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا آج بزدار ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے اس دور میں بزدار نے ایک ایک ڈپٹی کمشنر کو ہائر کرنے کے لیے اور اسسٹنٹ کمشنر کو ہائر کرنے کے لیے کتنا پیسہ لیا تھا अभी एक प्रोब हो रही है और वो प्रोब है इंग्लैंड में एक नंबर्ड कंपनी के नाम से जगह खरीदी गई है बहुत भारी कीमत के साथ, और खरीदी भी कहाँ है जुल्फी बुखारी, मेरा ख्याल है शायद उसमें इन्वॉल्व हैं, मगर उसमें इमरान खान को तो ढेला भी नहीं मिलना, वो बीबी बीबी बुशरा और फराह गोगी। आप देखिए हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे फसली बटेरे आके बैठ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, हम उस ट्रैप में गिर जाते हैं। ये
मसला हूं भी यही हाल है, लोकी हूं एक पूरा गंद है तो सारे गंद, पॉलिटिशियन भी गंदा, मिलिट्री भी गंदा,
और आपस में ये सारे रिश्तेदार हैं, ओदी बीवी है ते ओदी बेटी है ते ओदी नूह है ते ओदी धी है ते ओदी साली है।
जरा इमरान खान ने काम कर दिता ना 75 साल ना कोई पॉलिटिशियन कर सकिया ना किसी ने करना ही सीगा, क्योंकि इन्हें दस दिता आवाम नु भी थोड़े असल दुश्मन कौन है, असल पाकिस्तान नुकसान पहुंचाने वाले कौन है, और हर बच्चे नु पता भी हूं कौन है कि खुम टपनी चाहिए।
ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪਰਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪ ਜਬ ਵੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਮਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਅਲਫਾਜ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਕੇ ਬੀਚ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਮੁਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਤੇ ਥੇ ਉਸਨੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਤੁਮੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੋ ਜੀਤ ਗਿਆ ਤੁਮ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੋ ਯੈਸ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਅਡੋਪਟ ਸਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ कि इसको हमने कैसे कवर करना है। मजा तो फिर है ना कि यहाँ जो इन लोगों के जूते कनाडा में धोते फिरते हैं, पहले तो आप उनका बाइकॉट करें, यहाँ की गवर्नमेंट को बताया जाए कि दे हैव लूटेड पाकिस्तान और पैसे लूट के लेके आए हैं। आप अपने मेंबर पार्लियामेंट से बात कीजिए, एनी पॉलिटिशियन हु इज हियर इन कनाडा, आई वुड नॉट से कि पाकिस्तान की शिकायत लगाएं, वो जो आपके इदारों के लोग कनाडा में आए हैं, किसी ने फार्म हाउस खरीद लिया किसी ने, तो आप कहें ना, पूछे अपने 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 मेंबर पार्लियामेंट को करें ना उसकी शिकायत। जी लास्ट कॉल ये है क्योंकि फिर मैं टॉप ऑफ द आवर लेनी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हेलो जी साहब, डायबिटीज के इलाज के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। शुगर ऑफ कोर्स बाज़ोकात प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाती है, बाज़ोकात हमारा लाइफस्टाइल खाने पीने के लिए, बाज़ोकात हमारी जॉब्स ऐसी होती हैं, बैठे बैठे टैक्सी वाले लोगों के लिए खास तौर पे। कहते हैं कि जैतून का तेल, बिल्कुल साहब, वी आर वेरी लकी कि कनाडा में जैतून का तेल आपको मिलता है, ठीक है, वर्जिन ऑलिव ऑयल लेके आइएगा। इसे कहते हैं कि अगर आप वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें तो आप अपनी ब्लड में शुगर की मिकदार को कम कर सकते हैं। आप अक्सर अरब फूड्स को देखें, आप बेशक तबूली खा के देख लें, उसमें कच्चा वर्जिन ऑलिव ऑयल डला हुआ होता है। आप उसका बैंगन का भरता खा के देख लें, उसमें कच्चा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल होता है। आप उनकी किसी किस्म की सैलड को खा के देख लें, उसमें कच्चा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है कहते हैं कि अगर ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें स्टार्च वाली खुराक और प्रोटीन की ज्यादती के साथ भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। शुगर की मिकदार कम करने के लिए अपने तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाते हुए ऑफकोर्स अगर आप ये कंट्रोल कर लेते हैं तो वजन भी कंट्रोल हो जाएगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान मुझे छोड़ो जनाब, कनाडा में भी डायबिटीज जो है हम साउथ एशियंस में इज वेरी कॉमन, और वो ये कहते हैं कि आपको चाहिए अगर आप शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कच्चा ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल को निस्बतन ज्यादा करें। हम कहते हैं जी मेरे घर में ऑलिव ऑयल इस्तेमाल होता है, मगर हम खाने को भून भून के ऑलिव ऑयल की जान को बराबर कर देते हैं, तो कोशिश करें एक चम्मच कच्चा ऑलिव ऑयल खाया करें, एक बात। दूसरी बात, रात को सोने से पहले, आई नो आप गूगल करके देख लीजिएगा, आपको यकीनन मेरी बात, या ऑलिव ऑयल या गरी का तेल जिसको कोकोनट ऑयल कहा जाता है, आपके पेट पे अल्लाह ने जो सेंट्रल ऑर्गन आपका बैली बटन बनाया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बीमारियां बैली बटन को हम जो इग्नोर करते हैं उसकी वजह से
सारी वेन्स का हेडक्वार्टर,
वेन्स का तमाम वेसल्स का हम कह सकते हैं, तमाम वेसल्स का। तो रात को सोने से पहले अपने बैली बटन में आप कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल डालने के बाद हल्का सा मसाज करें। आप देखिए आपकी कितनी बीमारियां इसी से कंट्रोल हो जाती हैं। अक्सर ड्राई आई के बारे में जब जिक्र किया जाता है तो ड्राई आई की ड्रॉप्स मिलते हैं अक्सर स्टोर्स में, $8 का ड्रॉप लाया, आई के बीच में ड्रॉप डाला। आप ये करने के बजाय अपनी नाफ पे ऑलिव ऑयल डालने के बाद लेट इट सेट देयर, सीधा होके लेटना पड़ेगा आपको, और उसके बाद अपने पेट का मसाज कर लें। डू इट ऑन अ रेगुलर ग्राउंड फॉर अ वीक और सो एंड जस्ट सी द डिफरेंस। सुन रहे हैं प्रोग्राम साज़ोबाज़, हम आपके साथ आरिफ और मुजफ्फर, स्टे ट्यून्ड प्लीज।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM, यंगस्टाउन टोरंटो।